नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 22 में, राजा शल्य, सारथी या अतिरथी। दोस्तों, हमारे आज के जो किरदार हैं वो उतने फेमस नहीं हैं, या यूं कहिए कि उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बट मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें ज़रूर राजा शल्य के बारे में पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें ये बता दूं कि राजा शल्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थे जिनके कारण पांडवों को जीत मिली थी। अब इससे पहले कि हम राजा शल्य से रिलेटेड कहानियाँ सुने या फिर जाने कि वो कौन थे, मैं थोड़ा टाइटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अनोखा है कि सारथी या अतिरथी। तो पहले मैं अतिरथी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। अब अतिरथी असल में एक तरह की रैंकिंग है जो उस टाइम पे वॉरियर्स को दिया जाता था। अब रैंकिंग सिस्टम ये कई सालों से चलता आया है, आपकी जितनी क्वालिटी है उस हिसाब से आपको एक रैंक दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये रैंकिंग वॉरियर्स के लिए सेट किया जाता था। तो जो सबसे नीचे का आता है रैंकिंग, उसमें होता है रथी। अब एक रथी जो है वो 5,000 सैनिक से लड़ सकते हैं। उसी तरह से एक अतिरथी 12 रथियों से लड़ सकते हैं, या तो 12 रथी कह लीजिए या तो 60,000 सेना कह लीजिए। अब ये रैंकिंग ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, जिस तरह से अतिरथी हैं, इसके बाद महारथी होते हैं, उसके बाद अति महारथी होते हैं, फिर महामहारथी होते हैं। तो ये रैंकिंग आपकी क्वालिटी के हिसाब से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। अब इसमें जो अर्जुन थे, अर्जुन अति महारथी के कैटेगरी में आते थे। अब एक अति महारथी 12 महारथियों को संभाल सकते हैं, या फिर अगर सैनिकों के काउंट में बताऊं तो 86 लाख को वो संभाल सकते थे। तो ये इस तरह से रैंकिंग ऊपर की ओर बढ़ता जाता था। तो ओवरऑल राजा शल्य एक अतिरथी थे जो अकेले 12 रथियों यानी कि 60,000 सेना को अकेले हैंडल कर सकते थे। तो ये उनके अतिरथी होने का मतलब है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन थे या महाभारत से कैसे जुड़े हुए थे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था या किसकी तरफ से पार्टिसिपेट किया था इसके बारे में। तो राजा शल्य जो हैं वो नकुल और सहदेव इनके अपने मामा लगेंगे, और वो माद्री जो हैं नकुल और सहदेव की माँ उनके भाई लगेंगे। माद्री पांडु की छोटी रानी है। तो अगर मैं पूरे फैमिली को डिटेल में अगर बताऊं आपको, तो राजा पांडु की दो बीवियां थी। एक थी कुंती, जिनसे उनको हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और जो छोटी रानी थी उनका नाम था माद्री, जिनसे उनको जुड़वा बच्चा हुआ नकुल और सहदेव। तो राजा शल्य माद्री के भाई लगते हैं और नकुल और सहदेव के मामा लगेंगे। तो ये तो था कि वो पांडवों से कैसे रिलेटेड थे। अब इसके अलावा उनकी खासियत ये थी कि राजा शल्य बहुत हेवी बल्कि शरीर वाले नहीं थे, वो बहुत स्लिम ट्रिम थे, लेकिन उनका जो युद्ध कला था वो बहुत ही खतरनाक था। मतलब गदा चलाने में वो एक्सपर्ट थे, फिर भाला चलाने में एक्सपर्ट थे, और इसके अलावा साथ ही साथ उनको रथ चलाने का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। तो जो कि बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन था उस टाइम पे, क्योंकि जो वॉरियर्स लोग रहते थे वो अपने साथ सारथी को लेके जाते थे कि जो उनका रथ चला रहा है और ये पीछे से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन राजा शल्य को जितने अच्छे से तलवारबाजी या फिर भाला या गदा चलाना आता था, उतना ही अच्छा उनको रथ चलाने का भी नॉलेज था। तो इसीलिए ये उनको बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन था। तो ये उनके बारे में एक मोटा मोटी एक रफ स्केच है कि राजा शल्य कौन थे, उनकी खासियत क्या थी। अब आइए जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में वो किधर से लड़े थे और उनका क्या रोल था। तो शायद आप लोग ये जानते नहीं होंगे कि हालांकि ये तो नकुल और सहदेव जो पांडव हैं उनके मामा लगते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की लड़ाई में इन्होंने कौरवों के तरफ से लड़ा था। अब उसके पीछे एक कहानी है कि वो इनके मामा होने के बावजूद क्यों कौरवों की तरफ से लड़े। तो ये जो ट्विस्ट है कि पांडवों के मामा होने के बावजूद वो कौरवों की तरफ से लड़े, इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई के स्टार्टिंग के टाइम पे, जब ये डिसाइड हो चुका होता है कि कौरव और पांडव आपस में लड़ेंगे, और फिर जगह जगह से जितने भी राजा लोग हैं वो लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे थे। कोई कौरवों को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, कोई पांडवों को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह से राजा शल्य भी अपने भांजों या फिर पांडवों को मदद करने के लिए अपने पूरा थल बल सेना लेके वो भी कुरुक्षेत्र की ओर पहुंचते हैं। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनको बहुत ग्रैंड रिसेप्शन मिलता है। मतलब वहां पे जाते के साथ उनको राजशाही तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिलता है। उनके घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता है, तुरंत खाना पीना मालिश, उनके जितने भी सेना है उसका बहुत अच्छे से देखभाल किया जाता है। तो अब राजा शल्य इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया है पांडवों ने। और उनके मन में यही बात था कि ये जितना भी सेटअप है, जितना भी ये ऑर्गेनाइज किया गया है, वो पांडवों की तरफ से किया गया है। अब रेस्ट करने के बाद वो फिर युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा को रखते हैं, किसी को बताते हैं कि जाओ भाई उसको बोलो कि मिलना है मुझे। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि ये जितना भी ऑर्गेनाइज किया गया था उनको रिसीव करने का, ये पांडवों ने नहीं किया था, ये किया था दुर्योधन ने। अब ये सुन के वो थोड़ा सा चकमका भी जाते हैं, लेकिन वो चूंकि दुर्योधन ने उनको इतने अच्छे तरीके से रिसीव किया था, इतने आदर सत्कार के साथ उनको रिसीव किया था कि वो इस बात से खुश भी थे। तो वो दुर्योधन से कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, तो तुम बोलो क्या चाहिए। तब दुर्योधन रिक्वेस्ट करते हैं राजा शल्य से कि कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हो रही है आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और आप मेरे तरफ से लड़ाई कीजिए। अब उस टाइम पर ऐसा था कि आपने किसी का अतिथि सत्कार रिसीव किया है तो आपको रिटर्न में वो जो कहेंगे उनका मान रखना चाहिए। तो राजा शल्य फिर वो मना नहीं करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा। और फिर न चाहते हुए भी वो फिर अपने मान को रखने के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। तो ये तो कहानी थी कि वो कौरवों की तरफ से क्यों लड़े। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि दुर्योधन ने इतना बड़ा सेटअप, इतना सारा चीज क्यों किया राजा शल्य को अपनी तरफ लाने के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजा शल्य जो थे वो भाला में या गदा में वो बहुत महारत था उनको, इसके अलावा बहुत अच्छे वो रथ भी चलाते थे। और कौरवों को कहीं ना कहीं भीम से बहुत बड़ा डर था, क्योंकि एक तो भीम पे जहर का असर नहीं होता था, दूसरा था कि उसको 10,000 हाथी का शक्ति भी था। और कहते हैं कि भीम को अगर कोई टक्कर दे सकता था गदा युद्ध में तो उसमें राजा शल्य भी एक थे। और इसके अलावा राजा शल्य अपने सेना को भी लेके आए थे जिससे कि उनका क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाता। तो ओवरऑल इनको बहुत ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़ायदा हो रहा था कौरवों को, राजा शल्य को अपने साइड लाने में। तो ये था कि ये राजा शल्य अपना प्रॉमिस कर देते हैं वो कौरवों की तरफ। लेकिन उनके मन में ये मलाल रहता ही है, क्योंकि अब ये लड़ाई ऐसी थी जहाँ पे कि जान जाना है, आपके सामने आपका भांजा आएगा तो आपको मारना पड़ेगा। तो उनके मन में ये मलाल रहता ही है। तो इसी बात को लेके वो कृष्ण से मिलते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि ऐसा ऐसा है और ये चीज़ हुआ है। तब कृष्ण उनको कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो घटना हुई है वो विदाउट रीज़न नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो आप ऐसा करो, आप शरीर से कौरवों की तरफ से लड़ो लेकिन मन से पांडवों की तरफ से लड़ना। अब उस टाइम पे तो राजा शल्य नहीं समझ पाते हैं, तो कृष्ण को कहते हैं कि जब भी आपको मौका मिले तब आप कर्ण के सामने अर्जुन की जोर जोर से प्रशंसा करना और जहां तक हो कर्ण के बारे में उसको थोड़ा डिमोरलाइज करना। तो कृष्ण उनको ये बात बताते हैं। अब कुछ जगहों पर यह मेंशन है कि जो कॉन्वर्सेशन राजा शल्य और कृष्ण के बीच में हुई है ये असल में युधिष्ठिर और राजा शल्य के बीच की कॉन्वर्सेशन है, जब युधिष्ठिर सारे अपने सीनियर्स से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं लड़ाई के पहले। तो कौरवों में इनके सीनियर्स होते हैं, जैसे उनके गुरु हैं, उनके दादाजी हैं, उनके मामा हैं। तो ये राजा शल्य से जब मिलते हैं तब राजा शल्य उनको कहते हैं कि मेरा मन असल में तुम लोग की तरफ से लड़ने का था, बट इस तरह से मैं मजबूरी में फंस गया और इधर से लड़ना पड़ रहा है। तब युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप तन से कौरवों की तरफ से लड़े लेकिन मन से पांडवों की तरफ से लड़े। खैर, तो चाहे सोर्सेस जो भी रहा हो, लेकिन ओवरऑल यही था कि राजा शल्य को ये कहा गया था कि आपको कर्ण को डिमोरलाइज करना है और अर्जुन के बारे में वाहवाही करनी है जब भी आपको मौका मिले। अब इसके बाद महाभारत की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। धीरे धीरे करके एक एक दिन बीतता है और एक एक दिन एक एक वॉरियर दोनों साइड से फिर मारे जाते हैं। और ऐसा करते 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 जैसे 10th डे में भीष्म पितामह गिर जाते हैं, फिर 15th डे को द्रोणाचार्य मर जाते हैं। तो अब ऐसा सीन आ गया है कि कर्ण को मौका मिला है कमांडर बनने का। दुर्योधन उनको अपॉइंट करते हैं कमांडर। अब कर्ण बहुत दिनों से मौका ढूंढ रहे थे कि कब अर्जुन से फेस टू फेस लड़ाई हो और फिर मैं ये प्रूफ करूं कि मैं उससे बड़ा धनुर्धर हूं। तो अब इसी बात को लेकर प्लानिंग चल रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये डिसाइड होता है कि अब चूंकि अर्जुन के जो सारथी हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनका दिमाग को तोड़ना बहुत खतरनाक है, तो उन्हीं के बराबरी का किसी ऐसे इंसान को सारथी बनाया जाए जिनको अच्छा खासा नॉलेज हो, मतलब लड़ाई से रिलेटेड। अब जितने भी वॉरियर बचे थे कौरवों के साइड में, उनमें राजा शल्य ही ऐसे थे जिनको कि बहुत अच्छा नॉलेज था रथ चलाने का और जो भी नीति अपनाई जाए लड़ाई करने वक्त। क्योंकि सारथी जो होते थे उस टाइम पे, उनका काम सिर्फ रथ चलाना नहीं होता था, जो अच्छे सारथी थे वो लोग गाइड भी करते थे, मोटिवेट करते थे, फिर वो लोग इंस्टेंट प्लान बनाने में हेल्प करते थे, पोजिशनिंग समझने में मदद करते थे अपने जिनको वो कैरी कर रहे हैं, उनको समझाते भी थे कि इधर इधर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था सारथी का उनको, जो अपने वॉरियर को लेके चलते थे। तो तब दुर्योधन रिक्वेस्ट करते हैं राजा शल्य से कि वो कर्ण के सारथी बन जाए दूसरे दिन की लड़ाई के लिए। अब ये एक कहानी है। दूसरी कहानी में ऐसा कहा गया है कि दुर्योधन ने ऐसा जानबूझ के बोला राजा शल्य को सारथी बनने के लिए ताकि पांडव लोग डिमोरलाइज हो जाएं, क्योंकि पांडव शुरुआती दिनों में कर्ण को बहुत चिढ़ाते थे। ये कहते थे कि तू सारथी का बेटा है, तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है, तुम हमारे साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो। तो ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे जो राजशाही मामा है मैंने उन्हीं को सारथी बना दिया उसका, जिसको तुम लोग चिढ़ाते थे, सारथी का बेटा। तो ये एक एंगल है। तो खैर जैसा भी रहा हो, अब ये डिसाइड हो चुका होता है कि राजा शल्य जो हैं वो सारथी बनेंगे और कर्ण को लेके वो युद्ध में जाएंगे। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। तब इनको समझ में आता है कि इन्होंने जो कृष्ण ने इनसे बात कही थी कि जब भी मौका मिले आप कर्ण को डिमोरलाइज करना। अब जब लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो ये नॉनस्टॉप अर्जुन की बड़ाई कर रहे हैं, नॉनस्टॉप अर्जुन की बड़ाई कर रहे हैं और कर्ण को डिमोरलाइज कर रहे हैं। उसको कुछ ऐसा भी कहानी सुनाते हैं कि तुम कौवे हो, तुम दूसरों पे पलते हो, दूसरों के खानों पे पलते हो, तुम्हें राजाओं के बराबरी नहीं करना चाहिए। तो ये गंदे तरीके से डिमोरलाइज करते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था पांडवों के जीत के लिए, क्योंकि कर्ण इससे डिमोरलाइज हो जाता है एक पॉइंट पे। तो ऐसे करके एक दिन पार होता है। दूसरे दिन क्या होता है कि कर्ण जाता है लड़ने के लिए, नकुल और सहदेव से वो लड़ता है, लेकिन कर्ण चूंकि उसको पता था कि ये उसके अपने भाई हैं और कुंती को वचन भी दिया था कि मैं मारूंगा नहीं, तो वो उनको ये बोल के छोड़ देता है कि तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा यंग हो मरने के लिए, तो वो छोड़ देता है उनको। तो राजा शल्य इस बात से थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कर्ण के इस बिहेवियर से। और उसी दिन कर्ण क्या करते हैं कि एक नागस्त्र वो निकालते हैं, वो एक दैविक तीर है जो वो अर्जुन पे चलाने वाले थे। अब इसमें क्या था कि वो अर्जुन के सिर पे निशाना लगा रहा था, तो राजा शल्य उनको गाइड करते हैं कि सिर पे निशाना मत लगाओ, अर्जुन के छाती पे निशाना लगाओ। अब लेकिन वो इतना डिमोरलाइज कर चुके थे, इतना नेगेटिव बातें कर चुके थे कि कर्ण को राजा शल्य के इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। उनको लगा कि कुछ ना कुछ चाल होगा, तो वो उनके इस बात को सुनते नहीं हैं और वो फिर अर्जुन के सिर पे निशाना लगा के तीर चला देते हैं। अब ये चीज़ इधर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के रथ को ज़मीन में थोड़ा सा धसा देते हैं। तो वो जैसे ही नीचे रथ धसता है, वो तीर अर्जुन के सिर पे नहीं लग के उसके मुकुट को तोड़ देता है। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी ये था कि कहते हैं कि जब वो नागस्त्र को यूज़ किया था, उस नागस्त्र में अश्वसेना नाम का एक नाग आके बैठ जाता है जिसको अर्जुन से बदला लेना था, क्योंकि अर्जुन एक जंगल जलाया था, खंडवा प्रस्थ नाम का एक जंगल जलाया था, उसमें ये अश्वसेना जो नाग है उसके पिता जल के मर गए थे और उसकी माता जी का भी मौत हो गया था, तो उसी का बदला लेने के लिए वो उस नाग जो है वो तीर पे आके बैठ जाता है जो कर्ण यूज करने वाला था। अब कृष्ण को ये बात पता चल जाता है तो वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन और कर्ण की लड़ाई के बीच में कोई तीसरा आके फायदा उठाए, तो इसलिए भी वो, एक तो अर्जुन को बचाना भी था और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई और फायदा उठाए, तो वो रथ को जमीन में धसा देते हैं तो अर्जुन बच जाता है। अब उसके बाद एक वही इनफेमस सा इंसिडेंट होता है कि कर्ण का रथ जो है वो फंस जाता है वहाँ पे ज़मीन में। अब वो कहता है कि अपने सारथी से, राजा शल्य से, वो कहता है कि प्लीज़ आप रथ को जल्दी से निकाल दो ज़मीन से बाहर ताकि मैं लड़ाई कर सकूँ, इसमें तो फंस के दिक्कत हो जाएगा। अब राजा शल्य कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि पहिया कैसे ठीक करते हैं, पहिया कैसे निकालते हैं, ये तो तुमको ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि तुम सारथी के बेटे हो। तो मजबूरी में कर्ण को लगता है कि अब तो नीचे उतरना ही पड़ेगा छोड़ के, तब वो मजबूरी में नीचे उतरता है और फिर अपने पहिए को निकालना शुरू करता है ज़मीन से। और फिर उस टाइम पे उसको श्राप भी मिला हुआ था कि ज़रूरत के टाइम पे वो अपना सारे मंत्र भूल जाएगा। और इसी टाइम पे वो अर्जुन क्या करता है कि वो तीर चला देता है और कर्ण की मौत होती है। लेकिन ये इतना अनफेयर था कि राजा शल्य अर्जुन के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको बहुत मतलब बुरा भला कहते हैं कि ये एक अच्छे वॉरियर की निशानी नहीं है। फिर कृष्ण उनको बोलते हैं कि अभी धर्म अधर्म का कहानी है, ये सही गलत सब ऊपर हो चुका है, तो ये हो जाता है इंसिडेंट। तो ये तो था कि क्योंकि अब कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन का लड़ाई से मन हट चुका होता है तो ऑलमोस्ट पांडव जीत चुके होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि राजा शल्य का जो रोल था बहुत इम्पॉर्टेंट था पांडवों के जीत के लिए, क्योंकि जैसे ही कर्ण ख़त्म हुआ दुर्योधन भी ऑलमोस्ट आधा मर चुका था, उसका मन हट चुका था। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे राजा शल्य, जो ज़्यादा फेमस नहीं रहे हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे पांडवों के जीत के लिए। तो ये तो थी राजा शल्य के बारे में कि वो कौन थे, महाभारत में कैसे रोल प्ले किया, पांडवों के मामा होने के बावजूद वो कौरवों की तरफ से क्यों लड़े। लेकिन आखिरी में क्या होता है कि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में युधिष्ठिर ऐसे होते हैं जो राजा शल्य को मारते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि राजा शल्य को शिवजी का वरदान था। उनको वरदान ये था कि सामने वाला जब भी कोई लड़ाई करने के लिए आएगा गुस्से में राजा शल्य से, वो जितना गुस्सा करता जाएगा वो उतना कमज़ोर होता जाएगा और राजा शल्य उतने मजबूत होते जाएंगे। मतलब अगर आप उनसे फाइट कर रहे हो तो आप जितना गुस्सा करके उस पर अटैक करोगे वो धीरे धीरे उतना उतना पावरफुल होता जाएगा और आप उतना उतना वीक होते जाओगे। तो ये एक मिला था उनको वरदान। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम जाके राजा शल्य से लड़ो, क्योंकि युधिष्ठिर को बहुत शांत स्वभाव और ऐसा माना जाता था कि वो बहुत शांत मिजाज के इंसान हैं और वो तुरंत गुस्सा नहीं होते हैं, तो वो जितना काम रहेंगे उतना उनके पास उनका पावर बचा हुआ रहेगा और राजा शल्य का पावर बढ़ेगा नहीं, तो ये टक्कर बराबरी पे हो सकता है। अब इसी बात पे युधिष्ठिर जाते हैं राजा शल्य से लड़ने के लिए। धीरे 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 वो लड़ते हैं और युधिष्ठिर चूंकि अपना आपको कंट्रोल में रखते हैं, अपना गुस्सा नहीं बढ़ाते हैं, अपना माइंडसेट को पूरा फोकस रखते हैं, तो राजा शल्य को जो दूसरों के अगेंस्ट में जितना पावर मिलता था, जो एडवांटेज मिलता था, वो एडवांटेज युधिष्ठिर के अगेंस्ट में नहीं मिलता है और फिर लास्ट में युधिष्ठिर जो है वो राजा शल्य को मार देते हैं। अब इससे कुछ पता चले या नहीं चले, बट ये तो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गुस्से में हम अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में सामने वाले का फ़ायदा भी कर देते हैं। कई बार सामने वाले का फ़ायदा हो ना हो, बट अपना नुकसान तो हमेशा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी गुस्से में हो तो कुछ भी बोलने के पहले या करने के पहले 3 सेकंड का टाइम ले ले, उसके बाद ही डिसाइड करें कि भाई ये चीज़ करना है या बोलना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपने जो बोल दिया वो वापस नहीं आप ले सकते हो। छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये ओवरऑल कहानी थी राजा शल्य के बारे में कि वो कौन थे, किस तरह से रिलेटेड थे, उनका रोल क्या था और लास्ट में उनकी मौत कैसे होती है। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों कुछ सुनाओ यार, अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुकू FM पे भी अवेलेबल है। वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ आप कमेंट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब चैनल पे अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विद अमित रवानी।